ഓം ശാന്തി. हमारे इस ब्राह्मण जीवन का मूल फाउंडेशन, वैसे फाउंडेशन के अंदर कई चीजें होती हैं, लेकिन आज के विषय के अनुसार विजय का फाउंडेशन निश्चय. विजयी ब्राह्मण आत्माएं निश्चय के आधार से ही विजयी बनती हैं. चार प्रकार का फाउंडेशन मैं आपको सुनाता हूं. आज की मुरली के अनुसार बाबा ने हम सबको पवित्रता के फाउंडेशन पर ध्यान खिंचवाया. कितनी सख्त मुरली बाबा ने स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, ये ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन कहें, नींव कहें, स्वच्छता और पवित्रता है. साथ साथ ज्ञान और योग, जो हम सब स्नेह के साथ साथ ज्ञान और योग का अच्छा फाउंडेशन मजबूत करते हैं, और उस ज्ञान योग में भी अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं. तो जहां अनुभव है, सत्यता है, निश्चय है, पवित्रता है, वहां पर ब्राह्मण जीवन सदा सफल है और विजयी है. विजय निश्चय के आधार से कैसे मिलती है? पहले तो किन किन बातों में हमारा संपूर्ण निश्चय होना चाहिए? आप सभी हमारे साथ साथ अपनी चेकिंग करना, क्या मुझ आत्मा का स्वयं में संपूर्ण निश्चय है? मैं जो हूं, जैसा हूं, बाबा ने मुझे इतने बड़े विश्व से, इतने बड़े भारत देश से चुन करके कोटों में कोई में भी कोई मुझ आत्मा को अपना बच्चा बनाया है. इस निश्चय को पक्का करो, मजबूत करो कि हम सबसे श्रेष्ठ, महान, भाग्यवान आत्मा हैं, जिन पर भगवान की नजर पड़ी. उन्होंने अपनी नजर से निहाल किया और अपना बच्चा बना लिया, और हम सब बच्चों ने ही कल्प कल्प इन विकारों पर, इस माया पर विजय प्राप्त की है. हम विजयी रतन, विजय माला के मणके, माया जीत सो जगत जीत बनने वाली आत्माएं हैं. इस स्वयं में स्वयं का निश्चय चाहिए. इस सृष्टि रंगमंच पर सबसे हीरो पार्ट बजाने वाली पूज्य और पूर्वज आत्मा है. अगर ये कुछ स्मृतियां निश्चय के आधार से हम रोज रिवाइज कर लें, हम हैं, तो मैं समझता हूं कोई भी स्वभाव, कोई संस्कार, कोई कमी, कोई कमजोरी ठहर नहीं सकती. सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. जहां अपने कमजोर संकल्प, कमजोर संस्कारों का चिंतन किया जाता, मैं तो हूं ही ऐसा, मेरे अंदर ये है, ऐसे कई नेगेटिव संस्कारों का चिंतन करने से आत्मा कमजोर बनती जाती. इसलिए सबसे पहले हर ब्राह्मण बच्चे को अपने स्वमान को जागृत करना चाहिए, कि संगम युग पर समय स्वयं भगवान ने हमें सेलेक्ट किया, अपनी गोद का बच्चा बनाया, इतना लायक बनाया विश्व की स्टेज पर इतनी पवित्र स्वच्छ निर्मल जीवन दे दी। पहला निश्चय स्वयं में और फिर हमारा बाबा जो सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान जो सबका सहायक सबका रक्षक सबका रखवाला है वो हमारा है निश्चय नशा है, ये निश्चय है तो नशा है, और जहां निश्चय और नशा है वहां पर कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, संसार एक तरफ हो जाए, सब विरोधी हो जाए, लेकिन जिसका साथी स्वयं भगवान है उसके लिए आंधी और तूफान क्या बड़ी बात है, पार हो जाएंगे। इसलिए सदा एक निश्चय रखना कि उस भगवान की डायरेक्ट छत्र छाया के नीचे हम सब पल रहे हैं, और विशेष सर्व संबंधों से उसने अपना बनाया है। लौकिक में भी अगर हो सकता है किसी का पिता टीचर हो, लेकिन वही पिता टीचर भी हो, गुरु भी हो, मित्र भी बने, साजन भी बन जाए, जिन संबंधों की आवश्यकता है वो सब संबंध एक से निभा सकें, इस संगम युग पर हम सब आत्माओं का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। परमात्मा पिता पिता के रूप से हम बच्चों को अलौकिक जन्म देता, मर्जीवा जन्म देता, बच्चा बना करके फिर खुद ही टीचर बन करके बहुत ऊंची तीनों कालों की तीनों लोकों की कर्मों की इतनी ऊंची नॉलेज इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता, सुप्रीम टीचर। कभी कभी मैं बहुत नशे से कहता हूं ये बात, लोग मुझसे पूछते हैं आप कितना पढ़े हो, मैंने कहा मैंने कॉलेज तो नहीं देखा है लेकिन स्वयं भगवान अभी तक मुझे पढ़ा रहा है। एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बाबा ने बनाया है, और जब किसी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर करने को मिलता है और जब बड़े बड़े वाइस चांसलर डायरेक्टर सामने बैठे होते हैं तो पहले बाबा को कहता हूँ बाबा आपका शुक्रिया, बाबा आपका शुक्रिया, आपने इतना योग्य बनाया है, इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, ज्ञान सागर बन करके अपने समान बना दिया। निश्चय है नशा है, इसलिए विजय हमारा जन्म से अधिकार है। तो आप सभी इस निश्चय और नशे को मजबूत करें कि हमारा टीचर कौन है, कितनी ऊंची पढ़ाई और कितनी स्पष्ट पढ़ाई, कोई बात में मुझाया नहीं, अभी तक तो भटकते रहे, भगवान के नाम से ही भटकते रहे, कौन है कहाँ है किधर है कुछ भी एड्रेस के बिना ढूंढ रहे थे, जहां गए वहां ठोकर ही लग गई। बाबा ने अपना परिचय दिया, नाम बताया, रूप बताया, धाम बताया, अपने गुण बताए, अपने कर्तव्य बताए, सारी एड्रेस दे दी और हम सबको डायरेक्ट लाइन दे दी, कभी भी बात कर सकते हो, हॉट लाइन है, कर सकते हो ना कि नहीं कर सकते, सबके पास हॉट लाइन मिली हुई है ना डायरेक्ट। तो हम सब इस निश्चय के आधार से कि उस सर्व शक्तिवान सर्व समर्थ परमात्मा पिता के साथ हम सब का डायरेक्ट कनेक्शन है, इस निश्चय के आधार से अगर आप चलेंगे रहेंगे अभिमान नहीं आएगा, अभिमान अगर आ गया तो ज्ञान उल्टा हो गया, लेकिन बहुत निर्माणता के साथ विजय जन्म से अधिकार इस निश्चय और नशे से बहुत निश्चिंत स्थिति का अनुभव करेंगे। बाबा निराकार कैसे साकार में आता है कैसे जाता है उसको देखा इन आंखों ने। साकार ब्रह्मा बाबा में आया, उसके द्वारा अपना पार्ट बजाया। ब्रह्मा बाबा को कई बार देखते थे तो शिव बाबा भूल जाता था, बाबा को कहना पड़ता था बच्चे अगर इस देहधारी को देख करके आओगे तो पाप चढ़ जाएगा, इसके अंदर जो छिपा हुआ है उसको देख करके आना। तो शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा में आए, बड़े गुप्त रूप से अपना पार्ट बजाया, और बाबा कभी कभी कहते थे मैं सदा थोड़ी सवारी करता हूं, अगर कोई बैल पर सदा सवारी की जाए तो भी थक जाएगा, मैं तो आता हूं चला जाता हूं। जब मुरली सुनानी है, बच्चों को भाषणा देनी है, मिलना है, आया और निकल गया। साकार से बाबा अव्यक्त हुए, दादी के तन में आना शुरू किया। किसी को भी पता नहीं था ये अव्यक्त पाठ कैसे चलेगा। ये जो 3 दिन का पीरियड था, 18 जनवरी 69 बाबा ने 9 बजे शाम को शरीर छोड़ा, 19, 20, 21 शाम तक। अब क्या होगा, बाबा का पार्ट कैसे चलेगा, किस तरह से हमको मुरली मिलेगी, कौन संभालेगा इतने बड़े यज्ञ को, कुछ भी निश्चित नहीं था। लेकिन कुछ आत्माएं बहुत निश्चय बुद्धि थी, और उस निश्चय बुद्धि के आधार से बाबा ने यज्ञ रचा, बाबा ने इतनी बड़ी रचना की, वही संभालेगा और कौन संभालेगा। और सचमुच जब बाबा 21 जनवरी 69 को शाम के समय गुलजार दादी के तन में जब भोग लगाया गया, पहली बार आए, बाबा ने कहा बाबा कहीं गया थोड़ी है, बाबा ने तो कमरा चेंज किया है, ड्रेस बदली है। बच्चों को कभी संशय नहीं आना चाहिए कि बाबा चला गया, बाबा बच्चों के साथ है। और जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक ब्रह्मा की आत्मा भी पार्ट से मुक्त नहीं हो सकती, शरीर से भले मुक्त हो गई। इतना निश्चय पक्का कराया उस पहली मुरली के अंदर कि बच्चे जब कहेंगे, जब याद करेंगे, जैसे कहेंगे, बाबा जिस तन में कहेंगे उसमें आ जाएगा। दादियों को निमित्त बना करके और इतना आज्ञाकारी रूप से, वैसे बच्चों को कहता आज्ञाकारी बनो, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिकल नजरों से देखा, अव्यक्त रूप में बाप दादा दादियों के आज्ञाकारी बन करके रहे। जब संकल्प किया, जिस समय संकल्प किया, बाबा आप आओ, दादी को बिठाया, उलझा दादी को ऐसे बिठा देते थे, भोग भी नहीं, कभी बाबा के कमरे में बिठा दिया, कभी दीदी के कमरे में बिठा दिया, कभी छोटे क्लासरूम में बिठा दिया, गद्दी पर ऐसे, दादी बैठो बाबा को बुलाओ। और हर दूसरे तीसरे दिन बाबा आ गए, जो डायरेक्शन लेना, जो पूछना, जो कहना, एक एक चीज अव्यक्त बाबा से डायरेक्ट पूछा, पालना ली। और बच्चे जो आते गए वो सब मिलन मनाते गए, किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि बाबा साकार नहीं है। दीदी दादी को निमित्त बना करके अव्यक्त रूप से बच्चों के साथ साथ रह करके देश और विदेश में इतना बड़ा महान कार्य कराया। बाबा के साकार में तो एक भी स्थान पर विदेश में सेंटर नहीं थे, बाबा के अव्यक्त होते ही दादियों ने संकल्प किया कि जो बाबा ने साकार में कहा है वो मुझे करना ही है। और बाबा ने उसमें बल भरा, शक्ति दी, और सबको देश विदेश में सेवाओं के विस्तार के लिए आगे बढ़ा दिया। आज कहाँ पहुंच गए, आज उस बाबा के पार्ट से, अव्यक्त पार्ट के शुरू होते ही देश विदेश में जहां जहां कोने कोने में केंद्र खुल गए, और केंद्र ही नहीं खुले, एक एक स्थान पर गुप्त रूप से अव्यक्त बाबा ने पालना की। एक स्थान पर एक बहन अकेली रहती थी, बहुत दूर कोने में, विदेश की बहन थी, अकेले रहती थी, बाबा का फोटो रखा था, साकार ब्रह्मा बाबा का फोटो। वैसे विदेश में कई स्थानों पर नहीं रखते हैं, निराकार कर रखते हैं शिव बाबा का, क्योंकि लोग समझते हैं ये लोग पता नहीं किस धर्म को मानने लगे, शायद अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है, इसलिए हिंदू को यहाँ बिठाया है। बाबा की शक्ल से तो, फेस से तो हिंदू लगता है। तो उन्होंने बाबा का चित्र रखा था, अंग्रेज बहन ने। वहां एक वैज्ञानिक आया और उस सेंटर पर वैज्ञानिक की दृष्टि बाबा के फोटो पर पड़ गई, और ऐसे उसको भासना ही कि बाबा नैनों से कुछ कह रहा है मुझे, वैज्ञानिक को। तो वो पूछता है उस बहन से जो अकेले सेंटर पर थी, बहन जी ये कौन है? अब वो समझी पता नहीं ये कहीं इसका विरोध तो नहीं करेगा। वो कहती हमारे इस विद्यालय के जो संस्थापक हैं ब्रह्मा कुमारी जी के, उनका ये फोटो है। कहता ये फोटो नहीं है, आपको लगता है फोटो है, ये तो चैतन्य है, साकार में है। बहन का ये फोटो है, और वो भाई जो नया नया आया था, साइंटिस्ट था, उसके पास एक पेंडुलम था, वो पेंडुलम उसके आगे लगाया तो सचमुच वो हिलने लगा ऐसे ऐसे। कहता ये चैतन्य में आपके सामने बैठा हुआ है। इतना अव्यक्त रूप में बाबा ने देश विदेश में बच्चों की पालना की, तब इतने सारे सेंटर्स, इतने सारे बच्चों का जन्म हुआ, हजारों लाखों की संख्या बनी। आज लगभग 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं 49 ईयर्स से अव्यक्त रूप में बाबा ने हम सब की अव्यक्त पालना की, और इतना पढ़ाया है, इतना सिखाया है, इतनी शिक्षाएं दी हैं। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा सिर्फ बाबा की अव्यक्त मुरलियों को रिवाइज करके देखे, ये सब प्रिंटेड है, ऐसा नहीं है कोई टेप में भरा गया या कोई ने बोला और छूट गया। साकार में तो साकार मुरलियां धीरे धीरे रिफाइन हुई, ज्ञान को बाबा ने एक साथ रिफाइन नहीं किया, धीरे धीरे किया। पहले आत्मा को अंगुष्ठाकार बताया, फिर अंगुष्ठाकार से फिर बिंदु तक आया, स्टार तक आया, फिर ज्योति बिंदु रूप में स्थित कराया, फिर कहा बच्चे पुराना ज्ञान तो एबीसी का है, इसको छोड़ो, इसको रिवाइज करो, जो रिफाइन ज्ञान है। लेकिन अव्यक्त रूप में 21 जनवरी से लेकर के अभी तक जितने महावाक्य उच्चारण हुए, वो सब आपके पास प्रिंटेड हैं, किताबें बनी हुई हैं। स्टडी करके देखो कितना हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की गहराई, हर धारणा बाबा ने बहुत विस्तार पूर्वक एक एक टॉपिक पर हम सबको पढ़ाया और समान बनाया। अब अव्यक्त पार्ट में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन परिवर्तन ही प्रत्यक्षता का साधन बनता है, और कुछ आगे कोई नवीनता होने वाली है। इसलिए हम सब बहुत निश्चय बुद्धि हैं कि बाबा के हर पार्ट में बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है, बाबा के हर दृश्य में राज है। अगर वो अव्यक्त रूप में अपने को छिपाना चाहता है, हो सकता है अव्यक्त रूप से बच्चों को जहां बैठे वहां साक्षात्कार कराना शुरू कर दे, क्योंकि बिना साक्षात्कार के, चाबी तो उसके हाथ में है, कहता है चाबी नहीं देता मैं बच्चों को, बिना साक्षात्कार के प्रत्यक्षता भी नहीं होगी। वाणी से तो हम लोगों ने बहुत ज्ञान दिया, बहुत सेवाएं कर ली, लेकिन जब हमारी दृष्टि से, हमारे वाइब्रेशन से, हमारे चेहरे और चलन से बाबा दिखाई देने लगेगा हर एक को, अपने आप लोगों को अनुभव होंगे, खींच होगी, तो अव्यक्त पार्ट बाबा आएगा नहीं आएगा क्या होगा, कई लोग थोड़ा सा मायूस पूछते रहते हैं एक दूसरे से। मैं हमेशा कहता हूं बाबा गया कहाँ है। बाबा को इतना प्यार से आह्वान करो, इतना प्यार से याद करो जो बाबा आपके सामने नजरों के हाजिर नाजिर हो जाए, साकार में अनुभव होने लगे आ गया। और कई बाबा के बच्चे ऐसा अनुभव करते हैं। अभी परिवर्तन तो इस सृष्टि का नियम ही है और परिवर्तन में ही हमारी उन्नति है, इसलिए इस परिवर्तन के दृश्य को भी हम सब साक्षी दृष्टा बन करके देखें और सदा हर्षित होकर के हर सीन में कुछ न कुछ रहस्य और कल्याण समाये हुए हैं। इसलिए हर बात में बहुत निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति। विजय का आधार है निश्चिंत स्थिति। जब निश्चय हो जाता है तो निश्चय के आधार से स्थिति निश्चिंत बन जाती, और जब निश्चिंत स्थिति बनती है तो ये बुद्धि बहुत लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है। वही बात उसको टच होती है जो होने वाला है, इसलिए सफलता मिलती है, इसलिए विजय होती है। निश्चय से विजय कैसे हुई? अगर हमारा निश्चय है कि भगवान सर्वशक्तिवान सदा हमारे साथ है, अव्यक्त रूप में हमारे साथ है, तो निश्चिंत स्थिति है। और निश्चिंत स्थिति है तो कहीं उलझती नहीं है, मूंझती नहीं है, घबराती नहीं है, बहुत हल्की रहती है। और उस हल्की लाइट में बाबा की यथार्थ टचिंग आती है, वो कैच कर सकता है। और जब कैच कर लेता है तो किसी भी परिस्थिति को सहज पार कर सकता है। इसलिए निश्चय से विजय है। तो स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, बाबा के पार्ट में निश्चय, और इस कल्याणकारी संगम के समय में संपूर्ण निश्चय, संगम युग जिसमें हम सब आत्माएं अब उस स्थान पर आकर के पहुंची हैं। चक्र के हिसाब से नाटक की अंतिम घड़ियों में आकर पहुंची हैं। किस घड़ी अचानक बाबा सबको उड़ा के ले जाएगा, गेट खोलेगा, हम सब तैयार हैं। हैं तैयार? एवर रेडी हैं कि नहीं है? हैं पक्का? देखना अपने आप को। ऐसे तो नहीं सोचेंगे ये काम रह गया, ये बात रह गई, ये करना था, ये करना था, बाबा फिर बहाना नहीं देखेगा। एक सेकंड में आत्मा इस शरीर से उड़ जाए। संगम का ये समय अब कहता है बच्चे सब कुछ समेट लो, विस्तार को सार में ले आओ, अब वापस जाने का समय है, नाटक पूरा हो रहा है। कल्याणकारी संगम का समय अति की ओर जा रहा है। कलयुग में हर चीज में अति अति दुख बढ़ रहे हैं, अति पाप बढ़ रहे हैं, अति भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उसको देख करके लोगों को लगता है इसमें क्या कल्याण है, इतने अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ये हो रहा है, विकारों का फुल फोर्स दुनिया के अंदर है। उसमें देख करके कई ब्राह्मण आत्माएं भी सोचने लगती हैं, बाबा तो कहता है कल्याणकारी समय है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है। ब्राह्मण परिवार के बीच में भी कई आत्माओं के हिसाब किताब आ जाते, मन मुटाव हो जाते, टकराव हो जाते, कहीं कोई हिसाब निकल आता, ये सब क्या हो रहा है, हलचल पैदा हो जाती। लेकिन नथिंग न्यू, ये सब बातें सिद्ध करती हैं अति के बाद अंत होती है। जैसे कहते हैं जब वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते डरना नहीं, ये दवाई से जो अंदर की बीमारी वो बाहर आ जाएगी, और जब बाहर आएगी तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो जो अंदर की छिपी हुई बीमारियां हैं वो सब बाहर आ रही हैं, क्योंकि बाबा अब सबको मुक्त करके ले जाएगा। तो जो कुछ हिसाब किताब हम सब ने बनाए हैं वो सब चुक्त होने का समय है, और उसमें कुछ न कुछ कल्याण है। और सबसे बड़ा कल्याण है कि आत्मा मुक्त बन रही है, इसलिए डरो नहीं, क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में उलझो नहीं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता है क्या, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा हुआ, कई बहुत दिल शिकस्त हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए दिल शिकस्त कभी नहीं होना, दिल शिकस्त समझते हैं, निराश नहीं होना, कभी उदास नहीं होना। बाबा अगर कोई परीक्षा आई है पार कर लेगा, हो जाएंगे, हिम्मत का कदम आगे रखो, बस भगवान हजार गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ है, हिम्मतहीन कभी नहीं बनना। जहां हिम्मत गई वहां सब कुछ गया। इसलिए कैसा भी पेपर हो, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बाबा को साथी बना लो, अकेला नहीं है, हजार भुजाओं वाला साथी मेरे साथ है। लेकिन अगर उलझ गए प्रश्नों में, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होता है, मेरे ही बड़े गले संस्कार हैं, मेरा ही कोई बहुत बुरा हिसाब किताब है, पता नहीं सब इतने पैसे वाले मैं को गरीब बाबा ने बना दिया। आज एक माता कह रही बाबा ने मुझे इतना गरीब क्यों बना दिया, मधुबन भी नहीं आ सकती। हमने कहा गरीब हो तुम, अरे जब बाबा के पास गरीबी का पाठ शुरू हुआ तो बाबा ने कहा बच्चे अखबारों में लिखो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारीज। यज्ञ के अंदर जब बेगरी पार्ट शुरू हुआ बिल्कुल कुछ नहीं रहा, 400 350 लोग खाने वाले और खाने के लिए चारा ना भी नहीं, बेफिकर बादशाह बाबा, निश्चय था कि बच्चे तो उसके हैं, भूखा तो रखेगा ही नहीं, जिसके बच्चे हैं वो खिलाएगा, वो पालना करेगा, मैं चिंता क्यों करूं, इतना निश्चय बुद्धि। एक दिन भी भूखा नहीं रखा, एक दिन भी भूखा नहीं रखा, लेकिन परीक्षा ऐसी थी जो लगता था पता नहीं कल सवेरे क्या खाएंगे। बाबा कहता बच्चों को जलेबी खिलाना है, एक दिन होली का भोग था, बाबा ने कह दिया बच्चे सवेरे जलेबी का भोग लगेगा। बहने तो डर गई, वो जो भंडारे वाली थी दौड़ के आई, बाबा आपने क्या बोल दिया, भंडारे में तो ना घी है ना चीनी है ना मैदा है, और जलेबी कैसे बनेगी। अब बाबा तो बड़ा चतुर सुजान था, कहता बच्ची मैंने थोड़ी कहा, जी बाबा ने, और शिव बाबा ने कहा है तो खिलाएगा ही, मुझे क्या पता है। ऐसा करो, विधि तो बाबा ने बताई है, विधि से सिद्धि होती है। आज सब 2 बजे उठ करके योग करो, 2 बजे योग करो, देखो फिर जलेबी का भोग लग जाएगा। 2 बजे उठे, योग शुरू किया, लाल लाइट हुई, सामने एक बहुत एंटी परिवार रहता था सिंधी भाई, उसकी नींद फिट गई। वो कहता है बच्चियों को बाबा ने 2 बजे क्यों उठाया त्योहार के दिन, जरूर है कुछ, बाबा मुझे पता नहीं क्या कह रहा। कहता बच्चे तेरे पास जितना रखा है ले आ, रात को ही उसने उठ करके जो अलमारी में रखा था अपने युगल को उठाया, अभी दिया। कहती सवेरे दे दूं, अभी क्या जल्दी, कहता सवेरे तक मेरी बुद्धि बदल जाएगी, अभी दे। उसी समय आया लेकर, वो युगल लेके आई, दिया दादियों को। दादियां कहती क्यों इतने टाइम आई, कहती अरे पति को नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं, सवेरे जलेबी का भोग लगवा दिया बाबा ने। निश्चय की विजय। गरीबी कहां से आ गई, जिसके पास ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, चरित्र का धन है, वो सबसे बड़ा धनवान है। पैसा तो उसके पीछे पीछे आ जाएगा। कभी भी डरो नहीं, घबराओ नहीं, जहां व्यर्थ खर्चे नहीं है, जहां देखा देखी नहीं है, जहां किसी से भेंट नहीं कर रहे हैं, दो रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, भूखा तो ही देंगे। लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय रखो, इस समय बहुत कल्याणकारी है। कोई पेपर आया है उसमें और सीखने को मिलेगा, और बाबा त्यागी तपस्वी बना करके साथ ले जाएगा, इसमें भी कुछ भाग्य है। इसलिए कभी भी नहीं सोचो हम तो गरीब हैं, हम तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, हम तो गांव के हैं। अरे गांव वाले और भाग्यवान हैं जिनको भगवान ने चुन लिया। मधुबन में समर्पित भाई बहने जो है ना 90% गांव के हैं, 95% और हम लोग तो ऐसे गांव से हैं जहां अभी भी बिजली नहीं पहुंची है, लाइन गई है, लेकिन दिवाली होली पर एक आधा बल्ब कहीं जलता है। आप समझ सकते हो बाबा ने ऐसे ऐसे गांवों से निकाला है। इसलिए कभी भी निराश उदास हताश नहीं होना, बाबा तो गांवड़े के छोरों को विश्व का मालिक बना रहा है। निश्चय बुद्धि विजयंती, स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय, समय में निश्चय, ड्रामा में निश्चय। ड्रामा कल्याणकारी है, हर सीन में कल्याण है, और इस ड्रामा के अंदर एक का पार्ट दूसरे के पार्ट से कभी नहीं मिलेगा। कभी भी भेद नहीं करो, ये मेरे जैसा क्यों नहीं करता, इसको मेरे जैसा करना चाहिए। कई बात से माताएं भाई डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैं बच्चों को ये कहता हूं इनको ये करना चाहिए, मैंने इनको जन्म दिया, इनको पढ़ाया, इनकी पालना की, ये कहना नहीं मानते और डिस्टर्ब हो जाते, खुद डिस्टर्ब हो जाते। और बाबा कहता है एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलेगा, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बहुत साक्षी दृष्टा होकर के अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन अधिकार नहीं रखो। निश्चय के आधार से विजयी बन जाओगे, जहां अधिकार रखोगे वहां डिस्टर्ब होते रहोगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि हर आत्मा का इस नाटक के अंदर अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। और इस नाटक की हर सीन में कुछ राज है। अगर गलत दिखाई दे रहा है, बहुत गलत दिखाई दे रहा है, बाबा कहता है उस गलती के पीछे भी कुछ अच्छाई छिपी हुई है। थोड़ा साक्षी होकर के देखो उसको, वो सीन जो आपके सामने आई है वो आपको सिखाने के लिए आई है। इसलिए बहुत निश्चय बुद्धि होकर के ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता, इसका मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं है, बाबा कहता अरे बच्चे परिवार तो यही है, 84 जन्म तुमने इन्हीं के साथ पार्ट बजाया है, कुछ तुमने किया है कुछ उसने किया है, उसका हिसाब किताब अभी आ रहा है सामने। क्यों मूंझ रहे हो, क्यों उलझ रहे हो, 84 जन्म जिनके साथ रहे हैं, खेल खेला, पार्ट बजाया, कुछ हमने अच्छा किया कुछ उसने अच्छा किया, कुछ हमने उसके लिए गलत किया कुछ उसने किया, और इस संगम पर वो सब चुक्त हो रहा है, सामने आ रहा है। कई ब्राह्मण आत्माएं छोटी छोटी बात में इतना भारी हो जाती, बाबा कहता बच्चे छोटी बात को बड़ा नहीं बनाओ, बड़े से बड़ी बात को छोटा बना दो। इसलिए हर बात में कल्याण है, हर आत्मा इस नाटक के अंदर निर्दोष है। कभी भी दोष दृष्टि नहीं रखना। अगर निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करना है, परिवार स्नेही बनना है, तो परिवार में कमी कमजोरी अवगुण दोष देखने की दृष्टि नहीं रखना। हर आत्मा के अंदर कोई न कोई क्वालिटी है, कोई न कोई विशेषता है, तब तो भगवान की उस पर नजर पड़ी है। इसलिए उस आत्मा को उस विशेष नजर से देखो और उसकी विशेषता से अपने आप को विशेष बना लो। कमियां देखेंगे तो कमियां तो हजार हैं सब में, और कमियों का भंडार हम बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहता बच्चे किसी की कमी कमजोरी संस्कार स्वभाव देख करके क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में उलझो मत। सब ड्रामा बना बनाया है, कल्याणकारी है जिसका डायरेक्टर, जिसका क्रिएटर, जिसका प्रिंसिपल एक्टर स्वयं भगवान है, और नाटक गलत कैसे हो सकता है। इसलिए कहता नाटक अटकना नहीं कहीं भी, कहीं अटक जाते हैं ना, तो इसलिए बाबा कहता बच्चे अटकना नहीं, बहुत न्यारे प्यारे होकर के ड्रामा की हर सीन को देखो और सदा स्मृतियों में रहो। कौन सी स्मृतियां रहें? अगर ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करना है तो स्मृतियां रखनी है, जागृत स्मृति रहनी चाहिए। सबसे बड़ी स्मृति है कि हम सब कल्याणकारी बाप के बच्चे उस बाप परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हैं, उसकी छतरी उसका वरदानी हस्त छत्र छाया के रूप में मेरे मस्तक पर है। आप सभी आंख खुलते ही एक अनुभव रिमर्ज करो, बाबा वतन से अपना ब्रहदहस्त हमारे मस्तक पर रख करके कहता है बच्चे सदा जीते रहो, सदा अमर रहो, सदा विजयी रहो, ये वरदान सवेरे सवेरे ले लो। कई बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं आकर के, क्या कहेंगे, मेरे को ये होता है, मेरे को ऐसे स्वप्न आते हैं, मेरे को सोल तंग करती है, मुझे नींद नहीं आती है। बाबा कहता है बच्चे ये सब कौन सी छोटी छोटी बातें करते हो, किसके बच्चे तुम, तुमको स्मृति नहीं रखती है आज के ये तांत्रिक मांत्रिक जो कर चल रहे हैं, क्यों चक्करों में जा रहे हो, तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान ये रखना सवेरे सवेरे बाबा का वरदानी हाथ छत्र छाया के रूप में अपने मस्तक पर रखो, बहुत अच्छा एक लाइट का ओरा बना करके उस चारों तरफ शरीर के डाल लो, आंख खुलते ही अनुभव करो कि मेरे चारों ओर एक बहुत पवित्र शुद्ध लाइट का आभा मंडल है, मैं एक बहुत पवित्र शरीर में प्रवेश कर इस शरीर को धारण कर रही हूं। अगर ये स्मृति रहेगी तो कोई कुछ भी करे कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उलझना नहीं है, सोचना नहीं है, सोचना बंद कर दो, कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता अगर आप बहुत अच्छे पॉजिटिव संकल्पों के आभा मंडल में रहते हो तो। सोचने की जो नेचर है, नेगेटिव सोच करके कई बार हम अपने सामने उस दृश्य को इमर्ज कर लेते हैं और न होने वाली घटना हो जाती है। एक बहन मुझे क्या कहती है, मुझे स्वप्न आते हैं कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मेरे को ऐसा डर जाती हूं मैं, मेरी नींद खुल जाती, फिर सोचती हूँ ये हो तो नहीं जाएगा कहीं। अब सोचो ऐसे ऐसे कमजोर संकल्प, ऐसे ऐसे नेगेटिव संकल्प क्यों रच रहे हो, जो सीन होने वाली है वो अपने आप होगी, लेकिन कोई भी दृश्य को खुद इमर्ज करके उस संकल्पों में अपने आप को व्यर्थ चिंतन में समय नहीं गंवाओ, और ऐसे नेगेटिव दृश्य को इमर्ज कभी नहीं करो। अगर स्वप्न आ भी गया तो भूल जाओ, फुल स्टॉप, मुझे नहीं सोचना ये बात, ऐसा हो ही नहीं सकता, बाबा हमारे साथ है, सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिमान है, वो रक्षक है सबका, बाबा के ऊपर इतना विश्वास तो रखो। बाबा साथी है जिसका, उसका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, और अनहोनी तो है ही नहीं ड्रामा के अंदर, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन याद रखो जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। अभी तक जो हुआ है अच्छा हुआ है, आगे जो होने वाला बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगवान को हमने हाथ दिया है, उसके साथ रहते हैं, उसकी श्रीमत का पालन करते हैं। श्रीमत में कभी भी मन मत और पर मत ऐड नहीं करना, जिसने श्रीमत में मन मत और पर मत ऐड कर दी उसका रखवाला बाबा नहीं बनता। इसलिए ध्यान रखना श्रीमत सिर माथे, और हर मुरली में बाबा की श्रीमत आती है, पूछने की किसी से जरूरत नहीं श्रीमत क्या है, बाबा की मुरली, और मैं तो कहूंगा ये साकार बाबा की मुरलियां सचमुच गुरु का ग्रंथ का वचन है। कई बार मैं कहीं कहीं जाता हूं, कहते हैं आपने आज की मुरली कैसे भेजी, ये मेरे लिए थी, आज मेरे प्रश्न ये थे और इसका उत्तर आज की मुरली में था। मैं कहता हूं मैं भेजने वाला नहीं हूं भाई, भले मैं मुरली सेट करता हूँ, ध्यान रखता हूँ, लेकिन 3 महीने पहले से बनाता हूँ। आज आपके बीच में क्या होने वाला मुझे क्या पता, वो जाने ना बाबा। मैं तो आंख बंद करके डेट सेट करता हूँ, भाई इस डेट को मुझे ये मुरली रिवाइज करनी है। बाबा जानता है बच्चे को, किस बच्चे को क्या देना है, जाने जाना नार वो है। और सचमुच अगर आपके आगे कोई भी परीक्षा आने वाली है या आ गई है, आप किसी से भी उत्तर न लो, आप बाबा की मुरली प्यार से उसी डेट की उठा करके देखो, आपको शायद पहली लाइन में उसका उत्तर मिल जाए। है ऐसा अनुभव माताओं, ऐसा अनुभव है भाइयों को, है देखो बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। तो क्या है ये, बाबा का जादू मंत्र नहीं है क्या? और हम सबके पास वो जादू मंत्र है, हम यूज नहीं करते। वो जादू मंत्र नहीं है जो व्यक्ति को बंदर बना दे। बाबा तो हमारे पास वो ज्ञान का जादू मंत्र देता है, मन मनाभव का मंत्र देता है, जो मन मनाभव का और ज्ञान का ये जादू किसी पर भी चला दो, बहुत रूहानी दृष्टि से, स्नेह की दृष्टि से दृष्टि दो। कहते सुनता नहीं है, गुस्सा करता है, ये होता है ये होता है। तो बाबा कहता है गुस्से का जवाब तुम गुस्से में दोगे तो और गुस्सा करेगा। मुस्करा दो, स्नेह से शांति से सुन लो, दृष्टि दे दो, बाबा की याद में चले जाओ, इसका ये पार्ट है। अगर दो भूत टकरा गए तो क्या होगा, उसमें तो भूत है ही और आप में भी आ गया सामने से, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना। बाबा कहता है भूत भूत से टकरा न जाए, बहुत शांति से। गुस्सा करता है कर लेने दो, जो कर रहा है उसका पार्ट, थक जाएगा कब तक गाली देगा। सिर्फ बाबा एक शब्द हम सबको देता है, दुख देने वाली दुनिया में सब दुख दे रहे हैं, तुम दुख लेना नहीं, देना तो दूर है तुम लेना नहीं। कई ले लेते हैं, देने वाला दे रहा है मुझे नहीं चाहिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो मैं क्यों लूं। अब इसके लिए बहुत दृढ़ता का संकल्प चाहिए कि मुझे कोई भी कुछ भी दे, मुझे वही लेना है जो मेरे काम का है। सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो, ये बाबा ने मंत्र पढ़ाया है। और ये ऐसे मंत्र हैं जो आपके जीवन के लिए हर बीमारी की दवाई है। एक कल मेरे पास साइंटिस्ट आया था, कहता है कोई भी प्रकार की बीमारी हो मैं मंत्र देता हूँ तो ठीक हो जाती है। बड़ी अच्छी बात है, बाबा ने तुमको ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं, और वो आप मंत्र देते हो कहते हो किसी को सुनाना नहीं, और हमको बाबा कहता है जो तुमको जो मंत्र देता हूँ तुम सबको सुनाओ, है ना, ऐसा ही मंत्र मिला ना। ये सब मंत्र हैं, सुख दो सुख लो, दुख न दो दुख न लो, मन मनाभो, ओम शांति, क्या है, सब मंत्र तो हैं। जो चीज मन के अंदर बार बार रिपीट की जाती है वही मंत्र बन जाती है, और वो बार बार स्मृति में रिवाइज करने से मंत्र का रूप ले ले जाती, और फिर वो जो संकल्प उठते हैं वो होने लगता है, सिद्ध हो जाते। तो हम सब विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर मुझे बाबा की पढ़ाई में, बाबा के पार्ट में, स्वयं में, स्वयं के पार्ट में, परिवार में, ड्रामा में संपूर्ण निश्चय है तो। और ऐसी निश्चय बुद्धि आत्माएं बहुत नशे में रहती हैं, अलौकिक नशे में रहती हैं, वो हद का नशा, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा नशा रहता है जो कोई भी बात की, कोई भी परिस्थिति की, कोई भी व्यक्ति की, कोई के संस्कारों की परवाह नहीं करते, बेपरवाह बादशाह, बेफिक्र बादशाह। बाबा अपने बच्चों को ऐसा बेफिक्र बादशाह बनाना चाहते हैं। बच्चे कुछ भी हो रहा है, हर बात को बहुत पॉजिटिव रूप लेकर के, इसमें भी कुछ भला है, इसमें भी कुछ कल्याण है, इससे भी कोई अच्छा रास्ता मिलने वाला है, इस परीक्षा से पास हो जाएंगे तो और क्लास आगे बढ़ जाएगा। संशय ना आए, मेरे आगे क्यों ऐसा आता है, मेरे से सब ऐसे क्यों करते हैं, ये मेरे आगे पेपर आ गया, देखो मैंने तो इतना बाबा के लिए किया, बाबा तो मुझे पूछता ही नहीं है, बाबा तो मेरे से बातें ही नहीं करता है, मैंने बाबा के लिए इतना किया, जैसे एहसान किया हमने। बाबा कहता है बच्चे बाबा के लिए अगर किसी ने किया है तो वर्णन क्यों कर रहे हो, बाबा तो 1 का 1000 गुना देने के लिए बन जाता है। आप सिर्फ बाबा को बहुत दिल से बाबा कहो, दिल का सौदा है। बाबा को सच्चाई बहुत पसंद है। जो सच्चे दिल से किसी भी समय बाबा को याद करें, कहीं पर भी याद करें, बाबा उसको अपनी हाजिरी का अनुभव कराएगा। लेकिन अगर जरा भी सच्चाई में खोट आ गई, खोट क्या आती है पता है, कहेंगे वो तो निराकार है, वो तो परम धाम में रहता है, साकार में तो कोई चाहिए। और साकार में कोई चाहिए संकल्प आते ही बाबा किनारा कर लेता। ठीक है, साकार वालों से ले लो। हम सब बहुत पक्के निश्चय बुद्धि होकर के रहे कि संगम युग पर बाबा हम बच्चों के साथ साथ है, हमको अकेला छोड़ता ही नहीं है। हम अकेले चले जाएं तो भी नहीं छोड़ता है वो। करण करावन हार बाबा करा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई तो ये किया ये किया ये किया, कहता हम नहीं आओ, कराने वाला अपने आप करा रहा है। बहुत निमित्त मात्र निर्माण चित्त बन करके बाबा को कहो, बाबा जो कराना है करा लो। संगम युग पर ये तन आपका है, ये मन आपका है, ये सब आपका है, मैं क्या कर सकता हूं। इतना नम्र चित्त बन करके, निर्माण चित्त होकर के बाबा को साथी बना करके रखो, आपको हर बात में पास करा देगा। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, फेल होंगे ही नहीं। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप सिर्फ चार छतरियां अपने ऊपर रखना, चार छतरियां। वैसे तो एक छतरी बहुत होती है बरसात में, लेकिन मैं आपको चार छतरी देता हूं, कभी कोई काम आ जाती है। एक है अपने ही श्रेष्ठ शुद्ध पॉजिटिव संकल्पों की छतरी। बहुत अच्छे संकल्प करो, कभी भी नहीं सोचो ऐसे होगा नहीं, ये करेगा नहीं, ये कैसे मानेगा, ये तो बड़ा गुस्सा वाला है, ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं। बाबा कहते तुमने पहले ही बीज गलत बो दिया, फल कैसे पाओगे। संकल्प करो सब अच्छे होने वाले हैं, सबको बाबा सुधारने वाला है, सबको पार ले जाने वाला है, सबको मुक्ति देने वाला है। दाता एक ही है, हत्ती एक ही है, कहां जाएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। बहुत पॉजिटिव संकल्प। और ये शुद्ध संकल्प का ओरा छत्र छाया का काम करता है। कहीं चले जाओ कुछ भी आपके ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन अगर पहले से ही कोई ऐसा संकल्प लिया और गए कहीं तो काम फेल हो जाएगा। इसलिए हर कार्य सफल हुआ पड़ा है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने मुझे मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगाया है, इस निश्चय के आधार से जाओ, आपको सफलता मिल जाएगी। ये छतरी है पहली, शुद्ध पॉजिटिव संकल्पों की छतरी। दूसरी छतरी बहुत ऊंची है बाबा के याद की। बाबा कहता बच्चे सदा मुझे याद की, मेरी छत्र छाया के नीचे रहो। याद ही छत्र छाया है, बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ कंबाइंड है। अपने साथ बिल्कुल बिंदु रूप में उसको अनुभव करो कि मैं आत्मा बिंदु हूं, उसको कितना स्थान चाहिए, वो मेरे साथ साथ है। बुद्धि से बाबा को आह्वान करके अपने बहुत प्यार से सच्चे मन से उसको बिठा लो अपने साथ। छत्र छाया के रूप में आपके साथ साथ रहेगा। जैसे कोई कहते हैं इसके ऊपर छाया घूमती है, हम कहते हैं हमारे ऊपर तो बाबा की छाया घूमती है, और कोई छाया आ ही नहीं सकती इसके आगे। और तीसरी छतरी है जो हमारी निमित्त आत्माएं हैं, उनकी दुआओं की। बहुत दिल से दुआएं दें, इतना श्रेष्ठ कर्म करो, इतना सुख देने का कार्य करो, इतना सहयोग और स्नेह दो सबको, सबको प्यार की पालना दो, जो निमित्त आत्माएं भी दुआएं दें और परिवार भी दुआएं दें। बाबा की दुआएं छतरी का काम करती हैं, और परिवार की और निमित्त आत्माओं की दुआएं भी छतरी का काम करती हैं। तो अगर हम सभी सिर्फ इस छत्र छाया के नीचे रहें, निश्चय बुद्धि बन करके इस छतरी को साथ रखें, तो विजय तो हमारे कदम चूमेगी। विजय हमारे साथ साथ है, हुई पड़ी है, कभी भी निराश उदास होने की जरूरत नहीं। कभी भी ये नहीं सोचो क्या करूं, मेरा ऐसा कड़ा संस्कार है, ये तो विकारी, मैं बहुत शायद अजामिल था, अभी तक ये काम पीछा नहीं छोड़ता, अभी तक क्रोध पीछा नहीं छोड़ता, ये तो भूत जैसे पीछे पड़े हुए हैं। कई लोग ऐसे सोच सोच करके ना बड़े दुखी होते रहते हैं, अपने सम्मान को भूल जाते, अपनी अथॉरिटी को भूल जाते कि बच्चे तुमको ही तो मैंने काम जीत बनाया था, तुम्ही तो जगत जीत बने थे, और कौन बनेगा, कोई दूसरा आएगा क्या? चलो है कोई संस्कार, उस संस्कार को मैं ऐसी योग की अग्नि जलाऊं तो उसका संस्कार हो जाए। योग की अग्नि जला दो, बाबा के प्यार में खो जाओ, समा जाओ, ये कड़े संस्कार अपने आप भस्म हो जाएंगे। किसी को बताने की सुनाने की जरूरत नहीं, कौन गाइड करेगा, कौन बताएगा? जिसको सुनाओगे वही उसी दृष्टिकोण से देखने लगेगा, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। बाबा कहता बाबा को सुनाओ और बाबा से शक्ति ले लो, बाबा अपने आप आपके उस संस्कारों को समाप्त कर देगा। लेकिन बहुत प्यार से, सच्चाई से, कई सुनाते हैं पता है, ऊपर ऊपर से सुनाते हैं जैसे मेरे से भूल नहीं हुई, ऐसे ही सुनाते हैं जैसे बहुत हल्के रीति से, सब करते हैं ना, मेरे से हो गया तो क्या है। वो संस्कार खत्म नहीं होता, अगर संस्कारों को खत्म करना है तो बड़े सच्चाई से रियलाइज करो और प्रतिज्ञा करो कि फिर से इसको आने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी त्यागना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन मैं इस संस्कार को फिर से इमर्ज नहीं होने दूंगा, तो इन संस्कारों पर जीत हो जाएगी। इसलिए निश्चय बुद्धि बन करके मैं कल्प कल्प देवता बना था, लक्ष्य सामने है, मैं ब्राह्मण हूं, फरिश्ता बनूंगा और ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बन के दिखाऊंगा, कोई दूसरे बनने वाले नहीं है, हम सबको ही बनना है और बाबा ने हमको ही चुना है, इसलिए हम सब देवता घराने की आत्माएं हैं, देवता बनना है और देवता बनने के लिए इस संगम युग पर दिव्य गुण धारण करने हैं। दिव्य गुण हमारे जीवन का श्रृंगार है, इसलिए इन श्रृंगार से अपने आप को सदा श्रृंगारित करके रखना और निश्चय बुद्धि हो करके सब दिव्य गुणों का आह्वान करो। जब बैठो योग में, ये शांति मेरा दिव्य गुण है, पवित्रता मेरा दिव्य गुण है, सरलता मेरा दिव्य गुण है, सहनशीलता मेरा दिव्य गुण है, इन गुणों का आह्वान करो और उन गुणों को जैसे एक एक अंग के अंदर धारण करके बस चलो, बस मैं आत्मा सब गुणों से जब संगम पर श्रृंगारी जाऊंगी तब तो मैं देवता बनूंगी। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने के लक्ष्य को सामने रख करके निश्चय बुद्धि बन करके रेस करो, विजय तो हुई पड़ी है, विजय हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी, इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। ठीक है, ओम शांति।